संस्कृत व्याकरण की परीक्षा है 31 जनवरी को, तो आप सब लोग निश्चित रूप से तैयारी कर रहे होंगे। और जो एक दो दिन हमने प्रश्न पूछा उसके माध्यम से आपने उत्तर बताए, उससे बहुत ही मैं तो आशान्वित हुई हूँ कि आप सबको अच्छा लग रहा है और सबने मन से पढ़ना शुरू किया है। इच्छा है कि हम अच्छे से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करें, तो एक दो प्रश्न इसमें भी करना चाहूंगी। चलिएगा, नयनम, नयनम माने होता है नेत्र। नयनम शब्द का विग्रह कीजिए और नयनम शब्द कैसे बना, किस सूत्र के द्वारा बना, ये जिसके ज्ञान में हो हाथ उठाएंगे, हैंड रेज करेंगे और फिर आपको स्पॉटलाइट करके अनम्यूट किया जाएगा। चलिए देखें कि किन लोगों ने हैंड रेज किया है। नयनम किनने किया है, मीनाक्षी जी को करें। मनीषा ने कल बहुत सुंदर बताया, यानी अच्छे से पढ़ रही हैं, कई लोगों के हैंड रेज हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए मीनाक्षी जी आप बताइए, ये मांडवी से है ना सर? हाँ
मांडवी मांडवी से बोल रही है, मांडवी से।
बहुत सारे विधान भी जो घोषित किए गए उनको किया है। नयनम शब्द का पहले विग्रह कीजिए और उसके बाद बताइए किस सूत्र से ये सिद्ध हुआ है।
अनम
अनम, अच्छा चलिए तो कैसे बना, कैसे बना?
एक
मैं देखो, हाँ हाँ पहले इसका मूल में विग्रह क्या है, ने प्लस अनम, हाँ उसके बाद क्या हुआ
या
कौन से सूत्र से ए सूत्र है, 48 नंबर, 48 नंबर का सूत्र है ए, फिर क्या हुआ
यह हो गया।
हाँ उसके बाद
ना अम,
हाँ ने प्लस अनम नयनम। तो अब सबको समझ में आ रहा होगा कि इसका मूल में विग्रह है ने प्लस अनम और उसके बाद ने के ए को ना को हलन कर दिया और ए को आय हो गया ए आय सूत्र से, है ना मीनाक्षी जी, यही बात है ना, ए को आय कर दिया नय हो गया और अनम है तो इसकी संधि हो गई नयनम बन गया। 48 नंबर के सूत्र पर ध्यान दीजिएगा और उसके ऊपर इसका विग्रह है ने प्लस अनम चे प्लस अनम, तो ए सूत्र से नयनम और चयनम बन गया। चलिए अब अगला प्रश्न करती हूँ, बहुत अच्छा लगा कि आप बराबर अभ्यास भी कर रहे हैं और उत्तर देने की इच्छा भी है, तो आप बताइएगा कि गो प्लस अश्व इसका संधि करके क्या करते हैं, क्या बना गो प्लस अश्व, कौन से सूत्र से जिन्होंने हैंड रेज किया हो उनमें से ही किसी को स्पॉटलाइट करें, है? चलिए अर्चना जी को करिए, कौन है अर्चना जी, चलिए दूसरे को करें, हाँ कौन से नंबर के सूत्र,
53 नंबर का सूत्र, सॉरी,
अच्छा किसमें क्या हुआ,
उसकी
12वें
नंबर के सूत्र से
जो की नौ प्रकृति रहेगी क्या हो जाएगा, और फिर क्या होगा, एक बार गवास्व, है ना आपने समझ लिया है ना, दो तरह से हो जाएगा। तो इसमें अवाह स्वरे सूत्र लगता है गो प्लस असौ। तो एक बार गो इति वा प्रकृति से ज्यों का त्यों रह जाता है गोसो, और एक बार अवाह स्वरे से ओ को अव होता है और आ मिलकर के संधि होती है तो गवासो बन गया। बहुत अच्छा, सब लोग जरा क्लैपिंग करें, ताली बजाएं कि अच्छा अच्छा उत्तर मिल रहा है। तो चलिए समय हो रहा है, आगे एक सूत्र और ले लेते हैं, केवल दो तीन सूत्र मात्र रह गए हैं। तो पेज नंबर 20 पर आइएगा कि अब आपने कल तेत्र और पटोत्र बनाया था, अब आज इसमें विग्रह है देवी प्लस ग्रहम, पटु प्लस हस्तः, मातृ प्लस मुखम, जले प्लस पद्मम, रय प्लस धृति, गो प्लस गति, नौ प्लस यानम। ये इतने विग्रह किए हैं, यानी कि अलग अलग शब्दों को किया है। अब कैसे ये बनते हैं, क्या बनते हैं, आगे का सूत्र देखिए। ना व्यंजने स्वराः संदेयाः,
ना व्यंजने स्वराः संदेयाः,
ना व्यंजने स्वराः संदेयाः,
ना व्यंजने स्वराः संदेयाः।
सबसे पहले सूत्रों को भी उच्चारण करने का तरीका होता है, जैसे दो जिसमें बिंदियां हैं इसको विसर्ग कहते हैं, इसका बराबर ह का उच्चारण इसमें आता है स्वराः संदेयः संदेयः। इस प्रकार से पूरा उच्चारण बिल्कुल शुद्ध कीजिए, और जो ऊपर बिंदी होती है उससे म का उच्चारण होता है। तो इन सूत्रों के उच्चारण में भी व्याकरण का प्रयोग होता है। तो न व्यंजने स्वराः संदेयः क्या कहता है सूत्र, आगे व्यंजन के आने पर पूर्व स्वरों की संधि नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या कहा, तो ग्रहम का जो ग है वो व्यंजन है, तो कहा आगे व्यंजन के आने पर पहले के स्वर में संधि नहीं होती है, तो देवी के बाद ग्रह जो है वो व्यंजन है, और देवी में ई जो है वो स्वर है, तो पूर्व स्वर की संधि नहीं हुई, यानी ज्यों का त्यों रहा। देवी ग्रहम, पटु हस्ता, इसमें भी हा जो है वो व्यंजन है और पटु में ऊ स्वर है, तो इसकी संधि नहीं हुई। मातृ प्लस मुखम, मा जो है वो व्यंजन है और मातृ में री जो है स्वर है, तो मातृ मुखम इसकी संधि नहीं हुई, ज्यों की त्यों रहे। जले पद्मम, इसमें भी जल में ए स्वर है और पद्मम का पा व्यंजन है, तो जले पद्मम ऐसा का ऐसा रहा। रई धृति धा, ये व्यंजन है, रई में ए स्वर है, तो ज्यो के त्यो रहे ये सब। गो गति, गा में ओ स्वर है, आगे गति का गा व्यंजन है, तो ये ऐसे का ऐसा रहा। नौ प्लस यानम, इसी प्रकार से औ, नौ में औ स्वर है और यानम का यह व्यंजन है, तो आगे व्यंजन के आने पर पूर्व के स्वरों की संधि नहीं होती है, तो ज्यो की त्यों इस प्रकार के ये शब्द रहे। ना व्यंजने स्वराः संदेयाः, ये नियम है, तो नियम लगने से इनकी संधि नहीं हो पाई, तो ये भी एक संधि प्रकरण के अंदर कहा गया कि किसकी संधि होती है और किसकी संधि नहीं होती है, तो इनकी संधि नहीं हुई, तो इसलिए इनको भी संधि प्रकरण में ही लिया है, कि इसलिए देवी ग्रह पटुहस्ता आदि ही रहे। अब आगे आता है पितृ प्लस यम, भ्रातृ प्लस यम, इनको आगे कैसे संधि करते हैं ये आएगा। तो दो ही सूत्र हैं, एक दो दिन के अंदर इन सूत्रों को समाप्त करेंगे, लेकिन आपको रिवीजन करना है। अब आप एक प्रश्न और बताइएगा कि घोष संज्ञा किनकी है, यानी कौन कौन से अक्षर घोषवान कहलाते हैं, घोषवान कौन कौन से अक्षर कहलाते हैं, जिनको आता हो शीघ्रता से, समय समाप्त हो रहा है, हैंड रेज करें और इसका उत्तर बताएंगे। संज्ञा संधि में है, घोषवान शब्द कौन से होते हैं,
अब जो व्यंजन होते हैं उनके शुरू के अक्षर, वो गोस्वान नहीं होते, वो बाकी के गोस्वान होते हैं, जैसे ग ख ण। दो है व्यंजन, तीस व्यंजन वो गोस्वान नहीं कहलाते।
और इनसे बचे जो तीन अक्षर हैं वो घोष कहलाते हैं, ये संज्ञा संधि के अंदर आया है। और क्या चीजें हैं, तो कितने अक्षर घोषवान हैं, ठीक है 20 अक्षर घोषवान है, बिल्कुल सही उत्तर बताया है सविता जी ने, और तालियां बजाएं। इस प्रकार से आप लोग व्याकरण भी पढ़ रहे हैं और सबने इच्छा व्यक्त की है कि हम सहस नाम स्त्रोत का भी शुद्ध उच्चारण करना सीखें, उसका भी समय आएगा। और अभी तो आप ये पढ़ रहे हैं और 31 जनवरी को सबको परीक्षा देने के लिए तैयार रहना है। 20 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे, उनमें से एक सही उत्तर पर आपको टिक करना है और अधिक से अधिक लोग आप व्याकरण की परीक्षा में भाग लेंगे, ऐसी हमें आशा है। अब इसको यहीं पर संपन्न करते हैं।